ओम शांति। ग्रुप नंबर 5। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्ति है, और जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ, और जहाँ संपन्न है वहाँ, और संतुष्टता की निशानी
प्रसन्नता।
संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। तो वह पूछ रहे हैं, सदा अपने इस ब्राह्मण जीवन की आदि से अब तक की सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं। सदा अपने इस ब्राह्मण जीवन की आदि से अब तक की सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं। कितनी प्राप्तियां हैं? अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी है। सार रूप में यही कहेंगे कि सर प्राप्ति अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। तो ऐसे अनुभव करते हो? आप पूछ रहे ऐसे अनुभव करते हो? सर प्राप्तियां संपन्न हो गए हो और प्राप्तियां भी अविनाशी है। तो बाबा ने जैसे कहा, सार रूप में यही कहेंगे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, तो सार रूप में प्राप्ति कौन सी है? लिस्ट तो बाबा ने कहा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे, कौन सी प्राप्ति? क्या क्या पाया, लेकिन कौन सी प्राप्ति?
बाबा।
हाँ, अविनाशी बाबा की प्राप्ति। एक जन्म आधा जन्म की नहीं, सदा काल के लिए प्राप्तियां हो गई। क्योंकि भक्ति वगैरह भी करते थे तो प्राप्ति की इच्छा तो इतना भगवान मिल जाए, नहीं तो जीवन में असंतोष बना रहता था। जैसे बाबा मिला पता चला ये देवी देवता तो सारे अलग अलग हैं, है ना, असंतोष खत्म हो गया जब बाबा मिल गया। तो सर्व प्राप्तियां संपन्न हो गए और प्राप्तियां भी अविनाशी है। एक जन्म आधा जन्म की नहीं, सदा काल के लिए प्राप्तियां होगी। कोई भी युग नहीं जहां आप आत्माओं को कोई प्राप्ति नहीं हो। अगर द्वापर से गृहस्थी कला शुरू भी होती है, फिर भी द्वापर से लेकर अब तक पूजे तो जाते हो ना, तो आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य बनते हो। तो मना होंगे हम पुजारी अपनी मूर्तियों के, लेकिन जो चढ़ावा है वो किसका होगा? वो तो अपना ही होगा। बाबा कह रहे आगे, चाहे स्वयं पुजारी बन जाते हो चैतन्य में, लेकिन जड़ चित्र के रूप में तो पूजे जाते हो ना, तो पूज्य की प्राप्ति तो है ही ना। चाहे जानते नहीं हो अपने को, लेकिन सारे प्राप्ति सारे कल्प के लिए है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड अभी बढ़ रहा है, तो प्राप्ति अभी है सारे कल्प के लिए। राज्य पद और पूज्य पद, कितने नशे की बात है। तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहो, स्मृति स्वरूप रहो। एक है स्मृति में रहना, दूसरा उसके स्वरूप में रहना। तो प्राप्तियां याद रहती हैं कि कभी भूल जाती हैं, कभी याद रहती हैं। हद के प्राप्ति वालों को भी कितना नशा रहता है। तो आपको अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो अविनाशी रूहानी नशा है। संसार में हद की प्राप्तियां हैं तो भी उनको कितना नशा रहता है, पद पोजीशन या और भी कोई भी विनाशी प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं आपको तो अविनाशी प्राप्ति है, तो रूहानी नशा अविनाशी है। कुमारियों को नशा रहता है, सदा रहता है या कभी कभी, कभी भूल भी जाता है, कभी मूड ऑफ होता है। कुमारियों का मूड ऑफ होता है रोती नहीं हो लेकिन चुप हो जाती हो। कितने समय से नहीं रोया है बाबा पूछ रहे, कब से आंखों से आंसू नहीं निकले? जब से ब्रह्मा कुमारी बनी हो तब से नहीं रोया है, या अभी नहीं रोती हो? मन में भी नहीं रोया है? कुमारियों को कोमल होने के कारण रोना जल्दी आता है। आजकल तो कोमल नहीं होती कुमारी,
कोमल क्या
वो उस तो जमाने में होते थे,
शेर के ऊपर सवारी करते हैं तो कोमल कैसे?
रोने में कह रहे बाबा, रोने के मामले में कोमल है। आंसू निकलते तो हल्का हो जाता है अंदर से। तो बाबा कह रहे हैं कुमारियों को कोमल होने के कारण रोना जल्दी आता है। नहीं रोती हो तो पक्की हो ना, तो सभी खुश रहती हो और पुरुषार्थ में भी उड़ती कला वाली हो या चढ़ती कला वाली हो? सभी उड़ती कला वाली हो अच्छा है, कभी नीचे कभी ऊपर नहीं होना, सदा उड़ते रहना। माताओं की भी उड़ती कला है ना, या बीच बीच में गिरना भी अच्छा लगता है? गिरकर उड़ना है या उड़ना ही उड़ना है? तो पहले बाबा ने कुमारियों से बात की, माताओं से अब पांडव उड़ती कला वाले हैं, उड़ना ही है क्योंकि
पांडव के साथ पांडव पति है,
पांडव विजयी है। समय ही उड़ने का है, अर्थात समय कम है और मंजिल मंजिल श्रेष्ठ है, तो बिना उड़ती कला के मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। इसलिए सदा उड़ते रहो, और उड़ने का साधन है उमंग उत्साह। वो भी कैसे आएगा? स्मृति स्वरूप। क्या स्मृति में रखेंगे? सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना, सदा और सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना, तो क्या होगा? इसे
उड़ती कला,
उड़ने का ये साधन है, पंख लगेंगे, उमंग उत्साह रहेगा। इमर्ज रूप में मर्ज नहीं, जानते ही हैं नहीं, मर्ज से इमर्ज करो। क्या क्या मिला, क्या थे और क्या बन गए, कल क्या और आज क्या, कल क्या थे और आज क्या हो गए? तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। प्राप्तियां रहेंगी स्मृति में तो वो खुशी रहेगी, कभी हलचल में नहीं आएंगे, नीचे नहीं लाएगी। नीचे आना तो छोड़ो, लेकिन हलचल भी नहीं, अचल। जो संपन्न होता है वो हलचल में नहीं आता है। हलचल में कौन नहीं आता? जो संपन्न होता है। जो खाली होता है वह हिलता है। कोई भी चीज हिलने वाली होती है तो उसको चारों ओर से संपन्न कर देते हैं ना, भरपूर कर देते हैं, तो हिलती नहीं है। और कोना भी खाली होगा तो हिलेगी, और हिलते हिलते गिरेगी। फिर क्या होगा? गिरकर खाली हो जाएगी, टूट जाएगी। तो कोना खाली होगा तो हिलेगी, और हिलते हिलते टूट जाएगी कोई भी चीज। तो संपन्नता अचल बनाती है। ऐसे ही ज्ञान अगर बुद्धि में भरपूर है तो अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। अगर जैसे ज्ञान विस्मृत हुआ तो हिलेंगे डुलेंगे, फिर टूटेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर टूटेंगे। तो बाबा ने कहा सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो। तो संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। तो सर्व प्राप्तियों में संपन्न होना, जब दाता मिल गया तो दाता क्या करेगा? संपन्न बनाएगा ना। तो ये भी नशा है कि हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं, साधारण बाप के बच्चे नहीं, दाता के बच्चे हैं। तो जो स्वयं दाता है तो वो मास्टर दाता बनाएगा ना, जो जैसा है वही दूसरों को वैसे ही बनाएगा अपने आप समान। तो जो स्वयं दाता है तो वो मास्टर दाता बनाएगा ना, तो क्या याद रखेंगे कौन हो? दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, जरा भी अप्राप्ति नहीं। कोई अप्राप्ति है? माँ पूछ रहे कोई अप्राप्ति है? कोई कोई रह गई है या कोई चीज चाहिए? अब क्या क्या चाहिए? नाम चाहिए, सेवा चाहिए, थोड़ा चांस मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को आगे रखा जाए, ये अप्राप्ति तो नहीं है? किसी को है तो बता दो, बाबा पूछ रहे किसी को है तो बता दो। मकान अच्छा मिल जाए, कार मिल जाए, कार हो तो सेवा अच्छी तरह से कर सके, जितने साधन उतनी बुद्धि भी जाती है, जितने साधन इकट्ठे करते जाएंगे तो बुद्धि उनमें विभाजित होती जाएगी, वही किस्त चली जाएगी, फिर कार आएगी, फिर दूसरा नया मॉडल आएगा, फिर वो आएगा पुराना हो जाएगा, एक तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कोई 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 नाम चाहिए, चीज चाहिए, सेवा चाहिए, थोड़ा चांस मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को आगे रखा जाए, यह अप्राप्ति तो नहीं है? किसी को है तो बता दो, मकान अच्छा मिल जाए, कार मिल जाए, कार हो तो सेवा अच्छी तरह से कर सकें, जितने साधन उतनी बुद्धि भी जाती है। जैसे हैं जहां हैं सदा कैसे रहो? खुश रहो, संतुष्ट रहो और प्रसन्न रहो। खुशी के साथ और क्या होता है? खुश, हर्षित और पूछते हैं ना खुश, राजी, सदा राजी। तो जैसे हैं जहां हैं सदा राजी, जो थोड़े में संतुष्ट रहता है उसको उसको सदा सर्व प्राप्ति की अनुभूति होती है। माना जो स्थूल में थोड़े में संतुष्ट है उसको सभी सूक्ष्म सर्व प्राप्ति की अनुभूति होगी, स्थूल में भी हो जाएगी। संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। कभी संतुष्ट नहीं होंगे, अपने पास सामान रखने के लिए जगह भी नहीं होगी फिर भी है संतुष्ट, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और खाना बना लेंगे एक। कोई भी चीज लाएंगे पहले उसको संभालने के लिए अलमारी चाहिए, फिर दूसरी चीज बनाएंगे, फिर दूसरा खाना चाहिए, फिर तीसरा खाना चाहिए, अलमारियां बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा किसके वश होगी? इच्छाओं के वश होगी, पर वश होगी अर्थात इच्छाओं के वश होगी। एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी, ये उस समय की बात है, अभी तो ज्यादा इच्छा उत्पन्न हो जाती, समय अनुसार बढ़ गई इच्छाएं, था नहीं ना अभी, तो एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी, तो आप क्या हो? हद के इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे हो कि कभी कभी छोटी मोटी इच्छा हो जाती है, संतुष्ट हो तो सदा ये गीत गाते रहो, कौन सा पाना था वो पा लिया।
बेहद का इच्छा रखना चाहिए, हद का इच्छा नहीं।
बेहद का इच्छा कौन सा? माना 15-20-25 कार्य मिल जाए थे।
वो नहीं, बाबा वाली जो
कौन सी
ज्ञान में बढ़ जाए, बाबा प्राप्ति अनुभूति ज्यादा हो, बेहद की इच्छा, इसीलिए तो हद नाम डाल दिया।
हद की इच्छा अर्थात छोटी मोटी इच्छाओं से मुक्त, बेहद की इच्छा, बेहद की इच्छा संसार का कल्याण हो, सबको पावन बनाने की इच्छा। तो हद के इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे हो कि कभी कभी छोटी मोटी इच्छा हो जाती है, संतुष्ट हो तो सदा ये गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया। अच्छा सभी संतुष्ट मणियां होना, तो ये था संतुष्टता है सबसे बड़ा खजाना, जहां संतुष्टता है वहां सर्व प्राप्तियां हैं। तो असंतुष्ट क्यों होते हैं, संतुष्टता कहां हमारी खो जाती है, जब इच्छाएं हैं और अप्राप्तियां, इच्छाएं भी क्यों पैदा होती हैं, दूसरों को कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ अपना, और पर चिंतन, पर दर्शन, पर चिंतन में भी क्यों चले जाते हैं हम, क्योंकि सर्व प्राप्तियों को भूल जाते हैं। बाबा ने बताया ना सबसे पहले कि सदा इस ब्राह्मण जीवन के आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हैं वो सदा स्मृति में रहती हैं, सदा और सर्व प्राप्तियां स्मृति में। जैसे प्राप्तियों से विस्मृत हुए तो फिर इच्छाएं जागृत होंगी, फिर जो पहले वाले पुराने आश्री स्वास्थ्य संस्कार है वो जागृत होंगे, फिर वो अपना काम करेंगे। तो सदा सर्व प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप रहो। तो बाबा ने कहा सारे कल्प के लिए प्राप्ति करने का समय अभी है ये, और उड़ना है, क्योंकि समय उड़ने का है, कम समय है और मंजिल श्रेष्ठ मंजिल है, तो बिना उड़ने के पहुंच नहीं सकेंगे, इसलिए सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। और उड़ने का साधन बताया उमंग उत्साह, और सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखो, ये उड़ने का साधन बताया। तो मर्ज नहीं, सदा इमर्ज रूप में, नहीं तो अगर इमर्ज नहीं रहेंगे तो हलचल रहेगी। बताया ना भावना, अगर चीज आधी है, भरी हुई आधी है तो क्या होगा, हलचल होगी, और हलचल होगी तो धीरे धीरे हिलेगी डुलेगी और फिर टूट भी सकती है, टूटने का चांस है, इसलिए सदा समर्थ रहो, समृद्धि स्वरूप रहो निरंतर, तो अचल रहेंगे। और किसके बच्चे हैं हम, दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता है, क्योंकि वो देने वाला है, तो जैसा है वो है वैसा हमको भी बनाएगा। तो सदा बाबा ने कहा स्मृति में रखो, मास्टर दाता हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो, जरा भी अप्राप्ति नहीं, या कोई कोई चीज रह गई है, फिर बाबा ने स्थूल चीजें गिनाई, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, कार चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए चाहिए से परे हद के इच्छा मात्रम अविद्या। तो सदा गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। और सार रूप में प्राप्ति है उनको किस चीज में कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, किसके जाने से, ब्राह्मणों के जाने से। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है पर कि अगर किसी को कहा जाए कुछ याद करो तो उसके जीवन के दुख, संताप और पीड़ा के जो क्षण है वो उसने संग्रहित करके रखे है, वो ज्यादा याद है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका वर्णन बड़े विस्तार से वो कर सकता है कि किस किस समय किस किस ने दुख दिया था, किस किस समय क्या क्या पीड़ा हुई थी, उसने संजो के रखे है ये सारे दुख पीड़ा वेदना। परंतु प्राप्तियों के जो क्षण है वो कम याद है, जो पल बीते तेरी यादों में, वो क्या है गीत में, वो क्या गीत है ना, जो पल बीते तेरी यादों में वो, जो पल बीते क्या अविनाशी हो जाते हैं, गीत है ना वो का, तो जो पल तेरी यादों में बीते वो अविनाशी हो जाते, परंतु उसको हम इतना याद नहीं करते जितना हम और चीजों को याद करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हुई है, सकारात्मक, परंतु नकारात्मक जो है उसका प्रभाव ज्यादा है, उसकी याद ज्यादा है, बाबा हमें विधि क्या बता रहे हैं कि जो प्राप्तियां है आदि से अब तक, जन्म से लेके तो अब तक, वो सारी प्राप्तियां मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में हो। क्या क्या मिला? सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं। केवल ये उत्तर नहीं है, क्या क्या मिला उसकी स्पष्ट स्मृति हो कि ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला। और केवल स्मृति नहीं, उसको बार बार रिवाइज करना, दोहराना, ये सब हो तब हम संतुष्ट रह सकेंगे। संतुष्टता बहुत ही बहुत ही बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसका वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। संतुष्टता संस्कार है, वैसे ही असंतुष्टता भी एक संस्कार है। अगर कोई व्यक्ति झोपड़ी में दुखी है तो अगर उसको महल मिल जाए तो वो महलों में भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो था झोपड़ी का दुख, अब है महलों का दुख। दुख तो दुखी है वो थी पहले की अतृप्ति और असंतुष्टता, अभी है एक नए प्रकार की अतृप्ति और असंतुष्टता, क्योंकि अतृप्ति और असंतुष्ट रहना एक संस्कार है। हमको अगर लगता है ये हमारे पास नहीं है तो वो वस्तु से उसका संबंध नहीं है, वो हमारे मन की दशा है। वो अगर मिल भी जाए तो भी आत्मा असंतुष्ट ही रहेगी, क्योंकि असंतुष्टता का संस्कार उसमें है। हमें अपने अंदर संतुष्टता का संस्कार धारण करना है। बाबा ने कहा ना अभी कि कुछ वस्तु सब कुछ है, ये भाव कि मुझे सब कुछ मिल गया है, ये भाव एक संतुष्टता का भाव है। उसमें अप्राप्त भी, अप्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव होगा। कुछ भी नहीं है फिर भी ऐसे लगेगा कि सब कुछ मिल रहा है, थोड़े में राजी हो जाएंगे उसे बहुत। और जो अतृप्त आत्मा है, असंतुष्ट आत्मा है, जो भरपूर नहीं है, असंपन्न आत्मा है, उनको सब कुछ मिल भी जाए स्थूल का फिर भी संतुष्टता नहीं आएगी, फिर भी लगेगा और चाहिए और चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को देखने की वहां पर कंपैरिजन है, तुलनात्मक दृष्टिकोण है। आज की मुरली में भी संपूर्ण मुरली, आज की जो साकार मुरली है उसका सार एक ही वाक्य है, तुम्हें दूसरों को नहीं देखना है, तुम्हें दूसरों का चिंतन नहीं करना है, अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। तो जब अपनी पढ़ाई करेंगे तब उसमें मस्त रहेंगे। अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, दूसरों के चिंतन में नहीं जाओ, तभी उन्नति होगी। उन्नति उनकी होगी जो दूसरों को नहीं देखते, दूसरों का चिंतन नहीं करते और अपनी पढ़ाई में मस्त रहते। ये सार है। जैसे ही दूसरों को देखने जाएंगे तो तुलनात्मक, उसको ये मिल रहा है, किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए ड्रामा न्यायकारी है, यहाँ हर एक को वही मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए या जिसके भाग्य में है। हम ये नहीं सोच सकते कि वो भी हमारे साथ आया पर वो आगे जा रहा है, हम पीछे रह रहे, उसको सब कुछ मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है, उसके पास साधन सुविधाएं बहुत है हमारे पास नहीं है। ये असंतुष्टता का भाव उत्पन्न करता है और असंतुष्टता इतनी सूक्ष्म है वो और बहुत गहराई में चली जाती है। फिर उसके बाद सब कुछ मिलने के बाद में भी आत्मा असंतुष्ट ही रहती है। तो इसको एक संस्कार के रूप में लेना है। जैसे असंतुष्टता एक बीज है वैसे संतुष्टता भी बीज है। जो आत्मा संतुष्ट है उसे चाहे कुछ भी प्राप्त हो वो हर चीज में संतुष्ट ही रहेगी। प्राप्त हो प्राप्त ना हो, कम प्राप्त हो ज्यादा हो, उससे वस्तुओं से उसका लेना देना नहीं है। वो चित्त की दशा है, मन की दशा है। जैसे एक सूफी संत था, वो बहुत ही प्रसिद्ध था, तो कई लोगों ने उसे एक बगीचा दे दिया और एक खेत दे दिया। वो कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो मरने वाला हूं। तो कहा नहीं आप रखो, इतना प्यार था सबका। तो कहा उसने जब उसके मरने के दिन नजदीक और नजदीक आए तो उसने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे तो बस मेरी झोपड़ी में दफन कर देना, अभी बचा ये बगीचा और खेत। तो वो एक बोर्ड लगा देता है तख्ता कि जो भी संतुष्ट है वो आकर इसे ले जाए ये वही ले सकता है जो कि संतुष्ट है। तो कई लोग उसके पास आए लेने के लिए पर उसने सबको लौटा दिया, क्योंकि कोई उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। जो उसने जो बातचीत इंटरव्यू लिया ना कि भाई तुम संतुष्ट हो या नहीं हो, सब आए और सबने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे दे दो इसको। तो राजा तक खबर गई। तो राजा ने सुना अच्छा इतने लोगों को उसने लौटा दिया, पर मैं तो संसार का सबसे संतुष्ट व्यक्ति हूँ। मेरे से जैसा मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो अप्राप्त है, सब कुछ है मेरे पास। तो वो जाता है और वो राजा कहता है कि मैंने सुना है कि आपने सबको लौटा दिया, पर आपको शायद मेरे बारे में खबर नहीं है। इस संसार का सबसे अधिक संतुष्ट व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। तो संत उसको कहता है, अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम मेरे पास क्यों आए? ये तो मैं उसी को दूंगा, ये जिसको देना है उसके पास मैं खुद जाऊंगा, उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। तो संतुष्ट व्यक्ति अर्थात उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छाएं नहीं है, जो है जैसी परिस्थिति है उसी में वो राजी है, उसी में स्वयं को मोल्ड कर देता है, उसी में भगवान को धन्यवाद करता है कि तुमने ये सब दिया। मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण है हर चीज में, जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है सब में वो अच्छाई को ढूंढता है कि इसमें सबसे अच्छा क्या हो सकता है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। और इसके विरोध में जो असंतुष्ट है, जो अतृप्त है, वो हर चीज में नकारात्मक दृष्टिकोण है, हर चीज में देखता है कि इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, इसमें, और वो नकारात्मक को अपने अंदर भरते जाता है और वो इतना गहराई में चले जाता है कि जन्म जन्मांतर वो साथ चलता है उस आत्मा के, केवल एक जन्म नहीं कई जन्म तक वो नकारात्मक, वो नकार जो उसने स्वीकार कर रखा है, वो नकार का जो भाव है उसे नरक की ओर ले जाता है, जीवन नारकीय बन जाता है, ऐसा वो नकार है। तो ये बाबा जो हमेशा मुरलियों में आते रहता है, अभी जो अव्यक्त वाणी भी चली ना, वो भी तो संतुष्टता के ऊपर ही कहा बाबा ने, संतुष्टता अगर है तो संतुष्टता का वायुमंडल चारों ओर फैलता है, संतुष्ट अगर है तो सर्व प्राप्तियां है, सर्व शक्ति है, स्वयं प्रिय, बाप प्रिय, परिवार प्रिय बनते हो, संतुष्टता अगर है तो माया हार खिला नहीं सकती, माया को हार तुम दोगे, संतुष्टता अगर है तो परिस्थिति आएगी परंतु ऐसे नजर आएगी जैसे कार्टून। ये वाली मुरली नहीं, अव्यक्त बाबा की 23 मार्च 1983। तो संतुष्टता के लिए बाबा ने बहुत कुछ कहा है, परंतु केवल सुनने मात्र से संतुष्ट नहीं होती आत्मा, संतुष्टता के लिए वो भरा हुआ चाहिए, भरा हुआ नहीं है तो हलचल में आएगा। तो भरना किससे है? ज्ञान से। जब तक अपने आप को ज्ञान और योग से नहीं भरते, चाहे कुछ भी करो, चाहे सब कुछ मिल जाए, चाहे 10-10 मोबाइल मिल जाए, परंतु आत्मा सोचे कि और कोई नया मॉडल तो नहीं आया, कोई नया एकदम लेटेस्ट, कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कि जिससे ये बहुत फास्ट हो जाए, और नाम होगा ऊपर से सेवा होगा। किस लिए चाहिए? सेवाओं के लिए। बाबा ने कार का उदाहरण दिया, तब कार की बातें थी, अभी और आगे की बात है। तो हर परिस्थिति में चाहे कुछ मिल रहा है चाहे ना मिल रहा है, हर चीज को प्रेम से स्वीकार करना, ये बहुत ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है। संतोष बहुत सूक्ष्म है, उसको उतनी ही सूक्ष्मता से स्वयं में धारण करना पड़ेगा। जो भी हो रहा है, एक दिखाते हैं कि बुद्ध का एक शिष्य उसके पास आता है और वो कहता है बिहार के किसी गांव में मुझे आपका संदेश देने जाना है। तो बुद्ध उसे कहते हैं कि अरे उस गांव में तुम नहीं जाओ, वहां के लोग बड़े ही क्रूर है, दुष्ट है, बहुत ही उनकी प्रवृत्ति जो है वो तमोगुणी प्रवृत्ति है, वो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को वहां रहने नहीं देते, टिकने नहीं देते, तुम्हें तो वो भगा देंगे। तो नहीं, कहता है मुझे जाना ही है, मुझे आपका संदेश देना ही है। अच्छा, तो बुद्ध कहता है मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछता हूँ, अगर तुम इस 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके तो तुम जा सकते हो। वो कहता है अगर तुम इस गांव में गए और वहां के लोग तुम्हारी बहुत निंदा आलोचना करने लगे, उपहास करने लगे, तो तुम क्या करोगे? तो कहता है मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। बोलते क्यों? अरे कम से कम उन्होंने मुझे मारा पीटा तो नहीं, केवल उपहास ही की, केवल निंदा ही की, केवल गाली ही दी, तो मेरे लिए दुख का तो कोई कारण ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अच्छा, तो उसको दूसरा प्रश्न पूछता है कि अगर वो लोग तुम्हें मारने पीटने लगे तो तुम क्या करोगे? तो कहते मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। बोलते कैसे? बोलते कम से खाली मारा पीटा, मुझे मारा तो नहीं पूरा, मृत्यु तो नहीं, मुझे कम पूरा मार तो नहीं दिया, केवल मुझे शारीरिक पीड़ा दी, वेदना दी, मुझे कंप्लीट, मेरी मृत्यु तो नहीं हुई ना, इसके लिए मैं खुश रहूंगा। तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हें मार ही दे और तुम मृत्यु शैया पर हो तो उस क्षण तुम्हें क्या अनुभव होगा? तो कहता है मैं फिर भी बहुत खुश हूंगा, क्योंकि कम से कम मृत्यु हो गई और जीवन में जो आगे मेरे से गलतियां होने वाली उससे तो मैं छूट गया। जीवन में न मालूम क्या क्या गलतियां मेरे से हो सकती थी। पता नहीं क्या क्या पाप मैं कर देता था, कम से कम उस पापों से तो छूट गया। तो वो उसको कहता है कि तुम योग्य हो जाओ क्योंकि ये वह व्यक्ति है कि वो जहां जाएगा उसे विधायक पॉजिटिव सकारात्मक ही दिखेगा। कठिन से कठिन विषम से विषम परिस्थिति में वो चीज को देखेगा जो कि संपूर्ण सकारात्मक है, वो ही ग्रहण करेगा वहां से। तो ऐसा जो दृष्टिकोण है सकारात्मक, ऐसा विधायक जो दृष्टिकोण है, इसी में आत्मा संतुष्ट रहती है। तो संतुष्टता को एक संस्कार रूप मानकर उसे हमें स्वीकार करना है। तो जहाँ संतुष्टता है वहां संपूर्णता है, वहां भरपूरता है, वो हिलेगा नहीं, वो दानी भी रहेगा फिर, क्योंकि इतना भरपूर है क्या करेगा, सबको देगा, सतही देगा सबको। तो वो मास्टर दाता के संस्कार भी वहां आ जाएंगे और वो अचल स्थिति में भी रहेगा। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं उसी के हृदय से निकलेगा, वो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, वो गीत गाने की भी आवश्यकता नहीं, वो हृदय का गीत है, हृदय संगीत है, उसे केवल ऊपर ऊपर से दिखावे की कोई बात नहीं है। तो संपूर्ण संतुष्टता को हमको इस रूप में धारण करना, एक संस्कार के रूप में, एक बीज के रूप में, जितनी आत्मा संतुष्ट हलचल से मुक्त। तो जैसे आज का दिन हमारे सामने है, तो इस दिन ये संकल्प करना है कि हमें संतुष्ट रहना है, बस ये संकल्प, चाहे कुछ हो, कोई मिले कुछ न मिले, संतुष्ट रहना है बस। तो ये संकल्प ही जो भी परिस्थिति आएगी उसमें हमें पार करा देगा, संतुष्ट रखेगा, केवल एक संकल्प। फिर हम क्या परिस्थिति आने वाली है वो हमको पता नहीं, परंतु ये संकल्प उसके बुनियाद है कि सब चीजों में मुझे संतुष्ट रहना है, बीज डाल के रखा है। फिर जो कुछ भी होगा उसमें हम संतुष्ट ही रहेंगे, एक एक चीज का सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने संतुष्ट, बाबा ने कहा संतुष्ट मनी, वातावरण फैलता है उसका। तो हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में वो संतुष्टता का जैसे संस्कार समा जाए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से सहयोग चाहिए, ना किसी से प्यार चाहिए, ना किसी से सहानुभूति चाहिए। अगर हम बीमार पड़े तो कोई ना आए मिलने तो भी ठीक है, कोई हम बीमार पड़े तो कोई हमें देखे ना देखे तो भी ठीक है। सबसे ज्यादा असहाय व्यक्ति बीमारी में हो जाता है, जो बीमार पड़ता है ना उसे चाहिए कोई, तो वहां पर उसका ज्ञान योग एक तरफ रह जाता है, और यहाँ उसको चाहिए, प्यार चाहिए। सबसे ज्यादा प्यास किसकी है, प्यार की, सहानुभूति की, केयर की। कोई पूछे, कोई खाना लाके दे, कोई दवाइयां लाके दे, कोई पूछे दवाई ली या नहीं ली, दवाई रखी तो है परंतु कोई पूछे, पर बात ऐसी होती है हम पड़े बिस्तर पर, बाजू वाला पूछता भी नहीं कि क्या है, बुखार है क्या है। हमारी अनकॉन्शियस अवचेतन में ही बहुत सारी इस तरह की इच्छाएं है कि दूसरों से हमें कुछ चाहिए। हम उस समय बाबा संपूर्ण रीति एक रीति से भूल जाता है कि वो भी है, ये भूल ही जाता है, और ये जो मनुष्य है इनसे ही हमें चाहिए सब कुछ। तो हमें अगर यह विश्वास है कि वही हमारा सब कुछ है, वही साथी है, वही सहारा है, वही सर्जन है, वही मुझे ठीक करेगा, तो किसी के भी वो जो स्थूल सहयोग है वो स्वतः ही मिलेगा, फिर उसकी हम चाहना नहीं करेंगे, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अगर हम चाहना करेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो स्वतः मिलेगा, ऐसा ये उल्टा नियम है इधर। अच्छा, ओम शांति।